اللہ کیوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بظاہر و ناقص اور ان کے امتحانات کا ذکر کیا ہوا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں اور ایسے پیغمبر جن کا سینکڑوں آیات نے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کرایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پسندیدہ پیغمبر ہیں. ہر نبی اللہ کا پسندیدہ پیغمبر ہوتا ہے لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خاص مقام حاصل کیا اور وہ خاص مقام کیوں حاصل ہے اس کی کئی وجوہات. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ان کے بعد جتنے بھی پیغمبر دنیا میں آئے وہ سب ان کی اولاد ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی نبی آئے مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک لڑکے کا نام اسماعیل علیہ السلام اور ایک لڑکے کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام. حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے کا نام ہے حضرت یعقوب علیہ السلام اور یعقوب کو ابراہیمی زبان سے اسرائیل کہتے ہیں. یہ جو بنی اسرائیل ہیں یہ سارے کے سارے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں جتنے بھی بنی اسرائیل کے طرف ہیں. اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کا نام یوسف علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کی اولاد کے بعد نے 18 اولاد کے نمبر کہنا کتنے پیغمبر 18 اولاد کے نمبر صرف حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں آئے اور حضرت اسماعیل علیہ ان کی اولاد میں 40 پشتوں کے بعد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. تو گویا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سارے انبیاء دنیا میں پیدا ہوئے اور اس بات کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہیں ان کی اولاد میں محمد رسول اللہ پیدا ہوئے اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا کے نتیجے میں ایسے ہوئے کہ وہ ایک دعا رسول اللہ نے فرمائی تھی اور اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبول کیا تھا اور ان کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کو حضرت نبی علیہ السلام کی اولاد میں پیدا کیا. یہ اہم بات ہے اور اس کے علاوہ اور بھی باتیں قرآن پاک میں ہیں کہ امتحان اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء کا دیا. نبی پر تکلیف آئے تو امتحان ہوتا ہے آئے تو وہ گناہوں کی سزا ہوتی ہے. نبی پر امتحان آئے یا ولی پر امتحان آئے تو وہ آزمائش اور انقلاب اور درجات کی بلندی کا سبب ہوتا ہے اور اگر غیر نبی اور غیر نبی پر امتحان آئے تو وہ اس کے گناہوں کی سزا ہوگی جو دنیا کی طرف سے اسے دی جاتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے ایسے پیغمبر ہوئے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے امتحانات میں مدد سے اور ان سے بڑے بڑے امتحان لیے. یوسف نے بھی पर कोई तकलीफ आए या कोई परेशानी आए या दीन के लिए वो मुश्किलात में मुबतला कर लिया जाए तो उसे चीखो पुकार नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसे बड़े सब्र तहम्मुल से और बहुत ज्यादा तहम्मुल और बर्दाश्त से उस पर अमल करना चाहिए और उसको बर्दाश्त करना चाहिए। किसी सख्त से सख्त तकलीफ पर वावेला करना ये अंबिया की सुन्नत नहीं है। अंबिया की सुन्नत है कि जितनी मर्जी परेशानियां आए, जितनी मर्जी मुश्किल आए, जितने मर्जी दुख पैदा कर दिए जाए, जिस कदर आदमी परेशानियों में मुबतला हो उसे सबर का सहारा करना चाहिए, तहम्मुल का सहारा करना चाहिए और बर्दाश्त का सहारा करना चाहिए। आपके सामने मैं हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के उस पहले इतिहास का जिक्र करूंगा। पहले आप चारों इतिहास का उन्वान समझे कि ये जो चार बच्चे हुए हैं ये चार बच्चे किस नौबत के थे। पहला बच्चा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आपके गुरूर में शराब लगाने का हुक्म हुआ तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम इसमें भी कामयाब हो गए। दूसरा बच्चा के बच्चा रो रो कर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मांगा, रो रो कर मांगा, उस बच्चे को जंगल में छोड़ने का हुक्म दिया कि इसको खाना खाबा की बे आओ या जमीन में छोड़ दो। चुनाचे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी हाजरा उस बच्चे को लेकर खाना खाबा में आए, सपा मरवा के चक्कर लगाए, पानी खत्म हो गया, जिसकी वजह से आगे गौतम का चश्मा जारी हुआ। ये वो वाकया है, ये दूसरा इतिहास था। पहला इतिहास आपके नमरूद में गिरने का, दूसरा इतिहास जो बच्चा रो रो कर मारा गया उस बच्चे को जंगल में छोड़ने का, तीसरा इतिहास कि उस बच्चे के गले में छुरी चला देगा, ये तीसरा इतिहास है। और उस तीसरे इतिहास को तो अल्लाह के कुरान ने कह दिया कि सबसे सख्त बच्चा ये था, सबसे सख्त इतिहास ये था, सबसे मुश्किल हर का सवाल ये था। और चौथा इतिहास था कि वो बच्चा जब बड़ा हुआ तो अल्लाह ने फरमाया कि ऐ रहीम अपने इस बेटे को ले जाकर मक्के की सरजमीन पर मेरा घर कायम करो, जिनका जिक्र कुरान पाक में है, वही जर पाओ की बराबरी को फवाइना निरल हुई की बदस्माई। तो ये चारों इतिहास हैं जिनका जिक्र मैंने आपके सामने तरतीब के साथ करना है। पहले इतिहास का आज जिक्र है जो कुरान पाक की इस आयत की रोशनी के अल्लाह ने बयान करवाया है कि वही पाक इब्राहिम की अभी आगा अब तक असला आया। ये पहला इतिहास है और इस पहले इतिहास में अल्लाह ताला ने पैगंबर को आग में शराब लगाने का हुक्म दिया। दूसरा इतिहास क्या है, फबस शराब के गुलाम अली, ये दूसरा इतिहास। तीसरा इतिहास इंदी अस बहू का पास जो मारा था कि बच्चे के गले में छुरी चलाई जा रही है, ये तीसरा इतिहास। चौथा इतिहास वही गुजर पाओ की बड़ा ही मूल कमाएगा निरंत करी की वही समाई, ये चौथा इतिहास। तो हम इंशाला इन चारों इतिहास का तरतीब बात घर को में इनका जिक्र करेंगे और तीन दो की दोनों में ये मौजूद इंशाला मौजूद हुआ। तो पैगंबर का जो वाक्य अल्लाह ने कुरान में बयान करवाया इससे इब्तदाई सूरत हाल क्या थी वो मैं आपके सामने अर्ज करना चाहता हूं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक ऐसे घर में पैदा हुए कि जिस घर में सिर्फ बुतों की पूजा नहीं होती थी बल्कि बुत बनाए जाते थे और बेचे जाते थे। उनका भारत बुत पर्व नहीं था बल्कि बुत साफ भी था और बुत फरोश भी था। और बुत फरोश के घर में अल्लाह ने बड़ा फरोश को पैदा किया, बुत फरोश के घर में बुत शिकर को पैदा किया, बुत फरोश और बुत साफ के घर में अल्लाह ने बुतों का बेड़ा गर्क करने वाला पैगंबर पैदा किया। ये अल्लाह की तकसीम है और अल्लाह के इनामात और इन इनामात पर मुसलमान जब गौर करता है तो शशकर और परेशान करता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अभी छोटे से बच्चे घर में बुत बनाए जा रहे हैं, बुत बन रहे हैं और इब्राहिम अलैहिस्सलाम बचपन में शऊर नबूवत रखते थे। ये बात याद रखें बाद लोगों का यह नतीजा होता है कि जब नबी मां के पेट से पैदा होता है तो उस वक्त वो मासूम नहीं होता نظریے کی علماء نے تردید کی ہے. اصل اتر ہے کہ نبی ماں کے پیٹ سے معصوم پیدا ہوتا ہے اور نبی جب بھی پیدا ہوتا ہے شعور نبوت لے کر پیدا ہوتا ہے. آپ دیکھیں نا کہ نبی کی عمر تو 7 سال ہے اور اپنے باپ سے کیا کہہ رہا ہے, جو کچھ میں اتر رہی اپنے باپ سے کہہ رہا ہے. اللہ کو وہ باپ کتنی پسند آئی کہ قرآن کے تیز رکاس میں وہ باپ اللہ نے معمول کر. آج بھی قرآن کا تیز کھولو 7 سپارہ سورت انعام میں اس تیز کو اللہ نے دخل کیا, وہ اللہ کہہ کر کے اللہ نے جو آئے کیا نام کروایا, فرمایا بھائی کالا ابراہیم لبی اس وقت کو اے تیرے پیغمبر محمد مصطفیٰ اس وقت کو یاد کر جب ابراہیم علیہ السلام لبی آتا جب اپنے باپ آدر سے کہا, جب اپنے باپ آدر ابراہیم علیہ السلام کے باپ کی عادت باپ اہل بدعت یہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے باپ آدمی کے چچا آدر, یہ غلط بات. چچے کو قرآن نے باپ کہیں بھی کہا, چچے کو اور کہتے ہیں اور باپ کو اب کہتے ہیں. قرآن کہتا رہی بات ابراہیم ابھی اس وقت کو یاد کر جب ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ آدر سے کہا, کیا جو کچھ کہا ایک ایک لفظ موتیوں کی طرح سونے کی پانی کی طرح اللہ نے محفوظ کر دیا. کیا کتنا خوبصورت لفظ تھا, اپنے ہاتھوں سے خدا بناتے ہو, خداؤں کو بھی تم ہاتھوں سے بناتا ہے. اتب تفیض اسلام عالیہ, کیا تم اپنے ہاتھوں سے خدا بناتے ہو. اتب تفیض اسلام عالیہ انی
ڈرائیور سے کہتا ہوں کہ گاڑی تیز مت چلا, گاڑی تیز
एक ही कहना गाड़ी पेड़ पत्थर हो इससे नुकसान होगा आपकी मर्जा है। और एक मैंने ये कहा और एक मैं ये कहूं कि पुरान रोड पर एक गाड़ी चल रही है और वो बड़ी तेज और वो गाड़ी तेज रफ्तारी की वजह से दूसरी गाड़ी से टकरा गई। 17 आदमी दूसरी गाड़ी से मर गए, 40 आदमी इस गाड़ी से मर गए, लाशें बिखरी गई, लोग रोते रहे, सुहाग गुजर गए, बीवियां बेवा हो गई, बच्चे यतीम हो गए। जब मैं ये वाकया हादसे का बयान करूंगा तो आपका उस मेरे कहने से ज्यादा इसका असर होगा कि ड्राइवर इस वाकया को सुनकर अमल करेगा कि यार मुझे तेज नहीं चलाना चाहिए। हालांकि मैं पहले कह रहा हूं कि जहां तेज न चलाओ उसका असर नहीं होगा, लेकिन जब ये वाकया बयान हुआ उसका असर ज्यादा होता है। यही है मां कुरान की आयत का कि ला इबरा तुल अल्लाह के जितने भी असर वाले हैं दुनिया में वो वाकया से नतीजा हासिल करते हैं। मैं कहता हूं सजदा न करो किसी कब्र को खुद पे असर नहीं होगा, लेकिन अगर मैं वाकया बयान करूं तो देखो कि फला आदमी ने मूर्त बनाई थी उसको सजदा किया था, हाथ से गुलाब बनाए थे उसको सजदा किया था, उसके बाद ये वाकया बयान करूं कि पैगंबर आया और नबी ने कहा कि ऐ मेरे अल्लाह इतनी अरा था वकौम का भी सलाम खुदी, नबी ने कहा तू तुम्हारा है, जब ये वाकया मेरे सामने नजर होगा तो तुम पर इसका प्यार होगा। यही है कुरान की आयत का माना कि ला इबरा तुल अल्लाह के अकलमंदों को वाकया सुनाकर अल्लाह शिर्क से तौबा करा। मेरे भाई ये वाकया इसीलिए तो आया वरना सारा कुरान वाकया का भर दिया अल्लाह ने। गैर मुस्लिमों ने सवाल किया, एक ईसाई ने मुझसे सवाल किया था कि देखो जी पैगंबर गुजर गए, नबी गुजर गए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम गुजर गए, ईसा अलैहिस्सलाम गुजर गए, मूसा अलैहिस्सलाम गुजर गए, सारा कुरान वाकयात पे अल्लाह ने भर दिया, हालांकि कुरान पाक में हिदायत और नसीहत की बातें होनी चाहिए थी। मैंने कहा अकल के अंदर अगर कोई आप, मैंने यही निशान को समझाई कि अगर मैं तुम गाड़ी तेज न चलाओ तुम पर असर नहीं होगा, अगर मैं वाकया बयान करूं तो असर होगा। उसने कहा कि मुझे ये बात समझ में आ रही है कि जितनी नसीहत वाली किताब कुरान है ऐसी किताब दुनिया में कोई नहीं। ये भी वाक्य बयान किया तो समझ में आया, अगर मैं वैसे बयान करूं कि कुरान नसीहत की किताब है नहीं समझ में आई, लेकिन अगर मैं वाक्य बयान करूं तो पता चल जाएगा कि इसकी अच्छी नसीहत वाली कोई था। मेरे भाई इस पर गौर करें कि पैगंबर के दिल में यह कैसे आया, 7 साल के बच्चे के दिल में यह बात कैसे आ गई कि वो अपने बाप से कहे कि जनाब अब्बा जी ये जो तो आप कर रहे हैं ये ठीक नहीं, ये मेरी अकल नहीं मान। तो आगे से अब्बे ने क्या कहा जा रहा है तू कल जमे कल। आजकल किसी बूढ़े से आप बात करें ना घर के किसी बुजुर्ग से, अब्बा जी एक काम गलत कर रहे हो, तू कल मेरे हस्ते जमे तो मेरे सीधा कर सकते हैं। ये घर है या नहीं है गल सची दसो है, चाहे प्यो साहब उल्टी चली गया हो कहना मेरे ना गल ना करी, बाबा कहना मेरे ना गल। और बहुत अक्सर बातें बुजुर्गों की बच्चे भी मानते हैं, क्या कहते हैं बाबा कहते हैं नमाज करो, आगे से बच्चा क्या कहता है कहते अब्बा जी ये नमाज दौड़े नमाज तुझे पुराने लोग सौली प्रकार से दौड़ते मसरूफियात करने के लिए मजबूरियां के लिए के कारोबार का बात नमाज दौड़ना हर कदम पुराने बाप ने कहा वाकदाली का नूरी इब्राहिम माला तूत समावा की वल्ला। ये बातें इब्राहिम के दिल में इसलिए आई कि हमने उसको ऐसा मलकूती अजमत अदा की थी, आसमानो जमीन के मलकूत और आसमानो जमीन का विजदान आसमानो जमीन का शऊर इब्राहिम के दिल में हमने उबार किया था। और जब हमने विजदान उतारा था तो क्या कैफियत थी, वो कैफियत थी अल्लाह ने बयान की। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र 7 था, इब्राहिम पर वही तो कोई नहीं आया, रात का वक्त था, फलम्मा जन्ना अलैहिम लैल रात के वक्त जब उसने आसमानों को देखा और आसमानों पे थोड़ी सी रोशनी नजर आई, रहा कौकबा इब्राहिम ने सूरज आसमानों के तारों को देखकर क्या कहा, काल हाजा रब्बी कि ये जो आसमानों पे तारे हैं शायद ये रब हो, लेकिन जब थोड़ी देर के बाद तारे शुरू हो गए तो इब्राहिम के विज्ञान ने कहा शऊर ने कहा क्या कहा, फलम्मा आसला जब तारों को देखा, चांद तो बड़ा चमक रहा था, उससे तो बड़ी रोशनी हो रही थी, उससे तो पूरी फिजा नजर हो रही थी। तो पैगंबर ने कहा कान आधा रखी, शायद ये रात हो। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब ये चांद भी गुरूर हो गया तो नबी ने कहा तलबा अपना कान न इल्लत जहती नहीं रखती, ए अल्लाह ये तो चांद भी गुरूर हो गया। ए वो परवरदिगार जो मेरी आंखों से ओझल है, ए वो परवरदिगार जो दुनिया में जरूर मौजूद है लेकिन मुझे उसका शऊर नहीं है, ए अल्लाह अगर तू अपना पता मुझे नहीं देगा कि तू कहां है, तू कौन है, न इल्लत जहती नहीं रखती तो मुझे हिदायत कैसे आएगी। तो इसीलिए कुरान पाक ने सारे सहाबा को राशिद कहा, गुलाम का हुमुर राशिद, कि ये सारे सहाबा ऐसे हैं कि इनके दिल से हिदायत फूट रही है, हिदायत जन्म लेती है, हिदायत फूटती है, खुद ब खुद हिदायत की तरफ ध्यान चला जाता है। ये है माना। इसीलिए खुलफाए राशिदीन को खुलफाए राशिदीन कहते हैं कि उनके दिलों में हिदायत फूटती थी। कुरान कहता है वाला कद आतैना, जब हमने दिया इब्राहिम रुश्दहु, हमने इब्राहिम को हिदायत के फूटने का मलका दिया, कि इब्राहिम को हमने वो मलका दिया जिससे इंसान बुरी और अच्छी चीज की शनाख्त कर सकता, जिससे इंसान में हिदायत की रोशनी आ जाती है। कुरान कहता है मिन कब्ल व कुन्ना बिही आलिमीन, और हम जानते थे कि इससे पहले इब्राहिम के पास रुश्द नहीं, इससे पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास वो मलका नहीं है जो बाद में दिया गया। इस मलके के अता होने के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप से कहा, इस काल अली नबी, एक दिन अपने वालिद से कहा और अपनी कौम से कहा, मां आजीब तमाशी, तमाशील ये तिमसाल की जमा है, इसका माना है मूरत, इसका माना क्या है मूरत, जो हाथ से बनाई जाए उसे तिमसाल कहते हैं, हाथ से काटी जाए जिसका साचा और सांचा हाथ से काटा जाए इस काल अभी जब पैगंबर ने अपने बाप से कहा और अपनी कौम से कहा मां आदि तमाशील ये आपकी बनाई हुई मूर्तें तुम्हें क्या करती हैं, तुम्हें क्या देती हैं, आप तुम रहा आपकी हो, तुम्हें क्या हो गया, मूर्त अपने हाथ से बनाते हो फिर उसका तवाफ करते हो, आपकी फूल कमाना है तो उसका तवाफ करना, उसका उसके घर चक्कर लगाना, काबू बचना आबा अना लहा आदि दी। तो कौम ने आदि से ये नहीं कहा कि नहीं नहीं ये तो मूर्तें अच्छी हैं, ये मूर्तें अच्छी हैं। कौम ने आगे से क्या कहा, वजदना आबा लहा आदि दी, हमारे बाप दादा यही काम करते हैं। मैंने एक मेरी तकरीर है पुरानी शिरक के मौजू पर, उसमें भी मैंने ये बात कही हुई है, उसकी केसर मिल जाती है और वो बात मैं अभी आपके सामने दोहराता हूं कि शिरक आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक शिरक की कैफियत बदलती रही लेकिन मुशरक का जहन कभी नहीं बदला। शिरक की कैफियत बदलती रही, मसला कुछ लोगों ने पांच बनाए, पांच बुत बनाए और या के नाम पर बुत बड़ा लातावर आज हाथों वाला स्वाह बड़ा या मुसल बता, ये पांच ये शिरक का तरीका। एक इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर में तरीका था शिरक का, कैफियत बदली। एक ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में शिरक का तरीका था, एक हुजूर के दौर में शिरक का तरीका था कि 307 को बात हुए थे, और एक आज के दौर में तरीका है कि कब्र को सजदा कर रहे हैं, कब्र को सब कुछ मान रहे हैं। तो कैफियत शिरक की बदलती रही लेकिन जहन मुशरक का कभी नहीं बदला। आप उस दौर के मुशरक से पूछें शिरक क्यों करते हैं तो जवाब में कहेगा मेरे बाप दादा ये करते थे, ये दलील नहीं देगा कि इसका जिक्र फलां किताब में है फलां जगह पर नहीं, कहेगा मेरे बाप दादा ये करते थे। नूह अलैहिस्सलाम के दौर के मुशरक से पूछो कहेगा मेरे बाप दादा ये करते थे, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर के मुशरक से पूछो ये काम क्यों करते हो कहते मेरे बाप दादा ये करते थे, हजूर के दौर में मुजाहिद से पूछो कहते मेरे बाप दादा ये करते थे, आज के दौर में किसी कब्र परस्त से पूछो कि कब्र को सजदा क्यों करता है कहते मेरे बाप दादा ये करते थे। तो शिरक की कैफियत हमेशा बदली लेकिन मुशरक की ज़हनियत नहीं बदली, मुशरक की ज़हनियत नहीं बदली। और दूसरी बात यह है कि शिरक पैदा होता है नेक आदमियों का नाम लेकर, शिरक पैदा होता है नेक आदमियों का नाम लेकर कि मैंने फलां बुजुर्ग के नाम पर मुजस्मा बनाया या ये कब्र फलां बुजुर्ग की है, तो नेक आदमी का नाम लेकर शिरक पैदा हुआ। और बिदत पैदा होती है नेकी का नाम लेकर कि ये ने जो तरीका बनाया ये नेकी है जी, इसका तो स्वाब है जी, इसके तो बड़ा अजर है जी, कब्र पे अजान देने का अजर है, फलां जगह जनाब सारे सवाब के इस तरीके का अजर है। तो शिरक पैदा होगा नेक आदमी का नाम लेकर, उसमें नेक आदमी का कोई कसूर नहीं, और बिदत पैदा होगी नेकी का नाम लेकर, उसमें नेकी का कोई कसूर नहीं। कसूर हमेशा उस गलती से नियत का होता है कि जो शिरक को और बिदत को जन्म देती। अल्लाह ताला अपने हर किस्म के शिरक से महफूज रखे। मेरे भाइयों इन वाकियात से अल्लाह ताला असल में शिरक से पूरी दुनिया को दूर करना चाहता है ताकि किसी किस्म के शिरक में कोई इंसान मुबतला ना हो। अब आप गौर करें कि क्या जवाब दिया पैगंबर की कौम ने पैगंबर को, लफ्ज पर लफ्ज कुरान ने नकल किया, उन्होंने क्या कहा, वजद ना आबा लहा आदि, हमारे बाप दादा किसी तरह मूर्तों को सजदा करते थे, जमीन कोई नहीं। भाई अगर तुम सजदा करते हो तो किसी किताब में दिखाओ, किसी दलील में दिखाओ, लेकिन जो भी मुशरक होगा जो भी गुमराह होगा वो दलील का जवाब दलील से नहीं दे। ये कोई दलील है, हमारे अबाउ अजदाद ये करते थे, ये कोई दलील है, कोई दलील नहीं। क्या कहा, मेरे बाप दादा ये करते थे, तेरा बाप दादा जहन्नम में गया तो तू भी जहन्नम में, तेरा बाप दादा जहन्नम का ईंधन बना तो तू भी ईंधन बना। पैगंबर ने जवाब दिया का तो इस लफ्ज़ में कितना जोर है, जो आदमी अरबी जवाब जानता है उसको पता है कि नबी ने जो जवाब दिया वो बड़ा सख्त था। लकद, लकद का नाम पक्की बात, पक्की बात। लकद कौन तो अब तो ताकीद हो गई, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम हो वहां बाल कुमर तुम्हारे भाव का ही जरा भी खुली तुम्हारा
इब्राहिम अलैहिस्सलाम को क्या कहा, तू अजीब हाथ लाया या हमारे साथ मजाक कर रहा है? तो पैगंबर ने आगे से जवाब दिया, काल अतर रब्बुकुम, हाथों की बनाई हुई मूर्त में तुम्हारा रब नहीं हो सकती, बल्कि रब तुम्हारा रब है। रब्बुकुम काल अतर रब्बुकुम रब्बुस समावाति वल अर्ض, जो आसमानों का रब है तुम्हारा रब है, जो जमीनों का रब है तुम्हारा रब है, जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया, अल्लज़ी फ़तरा आसमान और जमीन को जिन्होंने पैदा किया, वहाना आला जालिमु मिन शाहिदी, और मैं इस पर गवाह हूं, ओ मेरे आबाओदार, मेरे रिश्तेदारों, मेरे चौधरियों, मेरी बरादरी के लोगों, आना आला जालिमु मिन शाहिदी, मैं गवाह हूं कि आसमानों का मालिक और जमीन का मालिक एक अल्लाह है, जिनको तुम पूछते हो वो परवरदिगार नहीं, और मैं इस बात पर गवाह हूं। और जब उन्होंने बड़े गुस्से में आकर पैगंबर को देखा कि ये हमारे पुतों का मजाक उड़ा रहा है, हमें गलत कह रहा है, हम पर झूठा इल्जाम लगाना चाहता है, तो पैगंबर को गुस्सा आया। नबी भी जलाली थे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी और जलाली थे, या नहीं थे? चुप कर गए, पीगल गर्मी लग रही, मैंने पता पक्खे आ चुके हैं, 15 पक्खे आ गए हैं, इंशाल्लाह अगले जुमे तक लग जाएंगे, सुबह अल्लाह भी नहीं निकल रही थोड़ी बहुत गर्मी पानी में निकल रही है सुबह अल्लाह। तो इतना परेशान हो गए हो जितना इब्राहिम अलैहिस्सलाम की गल तो परेशान हो गए, ठीक है, परेशान क्यों हो गए, तो रिश्तेदारी चल जाती है, ये की वजह सारे ना, और पैगंबर की बात मैं क्रोध की जबान से सुना रहा हूं, मैंने कोई बात अपने पास से नहीं की, लफ्ज़ पर लफ्ज़ वही बात नकल कर रहा हूं जो अल्लाह के कुरान ने दुनिया को बताया। कुरान की बात में बरकत है या नहीं? लेकिन तुम में हरकत हुई, कुरान की बात में बरकत है तुम्हारे अंदर, हरकत और सुबह अल्लाह से कह रहे हो, ये तो हम बड़ा पकौना बंदा हर जुमे दसना करता है कि गाल समझ आवे तो की कहना चाहिए, की कहिया बना लो, जो मेरा लगता पे तो सुबह अल्लाह ने कहा, समझ आ रही है बात, तवज्जो है, पैगंबर ने क्या कहा, आगे से नबी ने जो बात कही वो बड़ी अजीब बात, और उस पर उनकी नींदे उनकी नींदे, कुरान पाक ने वो लफ्ज़ भी नबी का नकल कर दिया जिससे काफिरों की नींदें उड़ गई। आजकल का कोई आदमी होता कहता जी गल को सख्त न करे, सख्त गल न करे, हैं रब को भी कह देता वो गल को सख्त न करी, किसी का दिल न दुखे, ये कहते हैं लेकिन किसी जगह कई जगह आप तकरीर करने जाते हैं ना, कहते मौलवी जी को गल इदा भी ना करे जे किसी का दिल दुखे, हूं मैं तुम्हें कुरान सुनान लगा, यह गल जी अगली आ रही है दस्या जे मैं रब ने बयान की है तो नबी ने फरमाई, इन्हें ना किसी का दिल दुखिया या खुश होया, किसी मैं कर रहे कुरान कहता है कि पैगंबर ने कहा वतल्लाही लअकीदन्ना अस्नामकुम बादा अन तुवल्लू मुद्बिरीन, मुझे कसम है परवरदिगार की मैं तुम्हारे इन झूठे खुदाओं का जो सत्यानाश करूंगा वो तुम भी याद रखोगे, तुम्हारी नस्लें याद रखोगे। इससे वो खुश हुए थे जब उनका दिल दुखा था, मैंने मौका तो नहीं दो बादा अन तुवल्लू मुद्बिरीन, तुम जरा मैंने टाइम तक लै दो, देखो मैं तुम्हारा हाल की कर रहा, ये खुश हो गए वडाम देने लगा, वडाम आने लगी है शिरक की, शिरक ने कहा बुरा गया कि मुसम्मत होने लगी, मुसम्मत तरदीद, पैगंबर ने कहा वतल्लाही लअकीदन्ना, कसम है मुझे परवरदिगार की लअकीदन्ना अस्नामकुम, मैं तुम्हारे बुतों का बेड़ा गर्क कर छोड़ूंगा, लअकीदन्ना अस्नामकुम बादा अन तुवल्लू मुद्बिरीन, तुम मुझे मौका तो मिलने दो, फिर मौका मिला, कौन सारी मेले पर चली गई, कहां चली गई, ये मेले वो तो کہ وَتَلَّهِ لَا قِيدَنَّا أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ. یہ نبی نے فرمایا. اور آگے قرآن کہتا ہے فَجَ عَلَهُمْ جُزَابًا. آج کل لوگ کیا کہتے ہیں کہ کسی پر تنقید نہ کرو, کسی کے غلط عقیدے پہ بھی غلط عقیدہ نہ کہو, کہتے کافر کو بھی کافر نہ کہو. کہتے ہیں یہ نہیں کہتے ہیں, ان سے کہو بتاؤ قرآن کہتا ہے پاجا آنا ہوں جزا کر, جن کو وہ خدا سمجھتے تھے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر بننے کر دیے, خدا ان کے ٹکڑے کیے. سجا آنا ہوں جزا کر, جزا کر کا مانا
قرآن نے رول کا بھی ذکر کر دیا.
خراب ہوں پتا کہ ادا کے واقعات امت محمدیہ بھی پیش ہونے ٹھیک ہے اسے بھی شرک ہونا ہے اسے بھی شرکا کے پوٹ ماؤ والے اور یہ واقعات انہوں نے فائدہ دیں گے انہوں کا حوصلہ بڑھ بتاؤ گے کہ تھی کلے ہی نہیں ہو میلے والے پیچھے بھی آئے گی میلے والے پیچھے بھی آئے گی تھی نہ کراؤ سب پریشان ہونے کی لوڑ کوئی نہیں انہوں نے پہلے بھی لڑے جی فرمایا کالو من چار دی ہاتھی نا اور سارے ربوں کا بیڑا کون غرق کر گیا یہ لفظ نے پورا من پالا آبا دی ہاتھی نا سارے علاوہ کا بیڑا کن غرق کرتا ہے انہوں نے وہ تو کوئی بڑا ہی ظالم ہے جن نے سارے ربا سے ترس نہیں کھاتا رب ترس نے لایا ترس انہوں نے کوئی ترس نہیں بچارا کھا جاتا اور ایک بندہ کہنے لگا کال سمے نہ نمرود کی عدالت لگ گئی پولیس آ گئی فوج آ گئی اس عدالت ایک بندہ بیان دین لگا کال سمے نہ کہنے اسی سنے فتح یس گرو ہوں یو کال لہو ابراہیم ایک نوجوان ابراہیم سی وہ اتنے رہ گیا سی وہ علاوہ ابراہیم علیہ السلام کو گرفتار کر کے لیا گیا پیغمبر گرفتار کر کے نمرود کے دربار میں پیش کیا گیا اور پیغمبر سے کہا نمرود نے کہا کالو ساری قوم نے کہا نمرود نے کہا انت پالتا آبا انت پالتا آبا کیا یہ کام آپ نے کیا ہے کہ ہمارے خوراک کے ناپ کاٹ دیے ہاتھ توڑ دیے پاؤں توڑ دیے بہار جاتی نام ہمارے خداؤں کا بیڑا آپ نے غرق کیا ہے یا ابراہیم پیغمبر نے آگے سے جو جواب دیا اس جواب پہ قربان کر نبی نے آگے سے ایسا جواب حکیموں نے جواب یہ بھی کہا میں نے نہیں کیا اور یہ بھی کہا میں نے کیا یہ بھی کہا پیغمبر نے جواب میں کہا کہ مجھ سے تم پوچھتے ہو کہ میں نے ان کا بیڑا غرق کیا آنا قتل جہاں سے برآمد ہوا اس سے پوچھو ایک پہاڑا سے آنا حضرت پوچھا میرے کو آئے یہ بھی کہنا سی پہاڑ کیوں آیا یہ نبی نے کیوں کہا پیغمبر کے اس کے فرمان میں حکمت تھی اتنی بڑی حکمت والا جملہ دنیا میں کوئی نبی کے بغیر نہیں کہتا نبی نے کہا مجھ سے پوچھتے ہو اس طرح سے پوچھو جس کے اس سے کہو کہ یہ فرحان کہاں سے آیا تو یہاں کھڑا تھا تیرے سامنے چھوٹے خداؤں کا ناک کٹتا رہا ہاتھ کٹتے رہے پاؤں ٹوٹتے رہے تو تماشا دیکھتا رہا اور تو تماشا دیکھتا رہے بڑا بے ایمان ہے تیرے سامنے ساری اپنا ویلا چل گیا خداؤں کا تو تماشا دیکھی گیا یہ بھی پوچھو آیا نبی کا یہ جملہ بڑا حکیمانہ تھا آگے سے انہوں نے وہی بات کہی جو بات نبی کہلوانا چاہتا تھا وہ بات کتنی اچھی تھی اللہ نے قرآن میں اس کو نقل کیا ہے حالانکہ وہ جملہ کافروں کا تھا وہ جملہ مشرکوں کا تھا لیکن حقیقت پسندی پر مشتمل تھا اللہ نے اس جملے کا ذکر اپنے قرآن میں کر دیا پاک کلام میں کر دیا یعنی مشرک کا کلام ذکر اس کا قرآن میں ہے کیوں کہ وہ حقیقت پر مبنی تھا مشرکوں نے کیا کہا آگے سے مشرکوں مشرک جواب دینے لگے کہ اے ابراہیم فرجعوا الى انفسهم فقالوا انکم انتم الظالمون جب پیغمبر نے کہا کہ اس بڑے سے پوچھو کہ کلہارا کہاں سے آیا ہے تو تمام مشرکوں نے پوری فوج نے بادشاہ نے سر جھکا دیا سمبرو کی سو الا سی ان کے سر ٹوٹ گئے ان کے سر زمین پر آ گئے وہ پریشان ہو گئے اور پریشان ہو کر کیا کہنے لگے کہ لقد علمت ما هؤلاء ينطقون ابراہیم تجھے یہ تو پتا ہے کہ ان میں بولنے کی طاقت نہیں پیغمبر نے کہا اور جن میں اپنا بیڑا غرق ہونے والا حال بتانے کی تمہارے ناک کان کی حفاظت خود نہیں کر سکتے تو تمہارے مشکل کشا کہتے. جواب ان کو اس دلیل کو توڑنا چاہیے تھا لیکن ایسا انہوں نے نہیں کیا بلکہ انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا کالو ہر رکو آگ کو جلاؤ, آگ جلاؤ رن شروع آگ ختم سارے لوگوں کو جمع کرو ان کو تم پائے نہیں. اور اس کے بعد کیا کہا کہ ابراہیم کو اٹھا کر اس آگ میں ڈال دو. چکھا کرایا گیا, آگ جلائی گئی, چوڑی میل لمبی چوڑی آگ تھی, سورے آسمانوں سے باتیں کر رہے تھے اور ایک گوپھن بنایا گیا پیغمبر کو اس گوپھن میں ڈال دیا گیا. دس ہزار فوجیوں اور سپاہیوں نے پیغمبر کو آگ میں گرانے کا اعلان کر دیا. جب آگ آسمانوں سے باتیں کرنے لگی تو نبی کو اٹھا کر اس گوپھن کو اٹھا کر جلتی ہوئی آگ میں ڈال دیا گیا. میرے بھائیوں یہ پہلا